اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور کا آج ہم صفحہ نمبر 14 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پیراگراف کا عنوان ہے ذات کا مطالعہ۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ اس چیپٹر میں چلتے جائیں گے یا کم از کم اس پیراگراف میں یا اس عنوان کے تحت جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہاں لفظ ذات نہیں آئے گا۔ کیا نوٹ کیجیے، پیراگراف کا صفحہ نمبر 14 پہ عنوان کیا ہے؟ ذات کا مطالعہ۔ اور اس میں لفظ ذات کہیں نہیں آئے گا، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیں، جب ہم اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور فنا ہونے والا جسم ہے اور یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ غور کریں، عنوان ہے ذات کا مطالعہ اور کیا کہا، ہم جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کا نام ہے ذات۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ٹرمنالوجی کو بہت زیادہ گھما دیا گیا ہے، بات سمجھنا دشوار لگتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنے آپ کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہم اپنی ذات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم ہیں، یہ جو ہمارا اپنا آپ ہے، یہ جو میں ہے، یہی ذات ہے، اسی کو انا کہا ہے۔ یہ آگے روح سے کام لے رہی ہے، روح آگے نسما کو تخلیق کر رہی ہے، اس کو گھوڑا بنایا ہوا ہے، نسما آگے جسم کو چلا رہا ہے۔ یہ بیسک فارمیٹ ایک دفعہ سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنے شعور کو ڈیولپ کرنا آ جائے گا۔ وہاں پہلے ہم نے صاف کہا بنے کہ بھئی یہ ہم ایک شعور ہیں، وہاں پہ بھی لفظ ہم آیا، ٹھیک ہے۔ حقیقی مسرت سے آشنا ہونا ہے وہ ہم نے ہونا ہے، دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم ہیں، ہم نے دکھوں سے بچنا ہے، ہم نے مسرتوں سے آشنا ہونا ہے۔ لیکن ہماری سوچ میں ایک غلطی کیا ہے، وہ یہ غلطی بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور فنا ہونے والا جسم ہے اور یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے، یہ ہماری زندگی کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن کہہ لیں، یا ہماری زندگی کو اسی سے ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اب یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی، کثافت، گندگی، تعفن اور سڑاند ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی، یہ مادی جسم کیا ہے؟ کثافت ہے، اس میں کثیف چیزیں ہیں۔ گندگی ہے، یعنی جب آپ کی چیزیں جو کھاتے ہیں وہ بھی گند سے بنی ہیں، یہ کھاد سے بنی ہیں، کھاد کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تعفن کا مطلب ہے بدبودار ہیں، اور سڑاند ہے، سڑاند کا مطلب سڑی ہوئی، کسی چیز کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے اسے سڑاند کہتے ہیں۔ اب اس سڑاند کی بنیاد اس نظریے پر قائم ہے، یعنی انسان کو سڑاند کا ہے کہ اس کا جسم گلتا سڑتا ہے۔ سب کے مشاہدے میں انسان مر جاتا ہے تو جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن دوستوں کو یہ اتفاق ہوا ہے کہ کسی کے جنازے میں انہوں نے مردے کو غسل دیا ہو، یا اس طرح کے موقع ملتے ہیں کہ ہم غسل، میت کو غسل ہوتے دیکھتے ہیں، یہ بات सबके मुशाहदे में है कि वो कहते हैं ज़रा जल्दी करो वरना जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाएगा और हकीकतन बू आनी शुरू हो जाती है 12-15-18 घंटे बाद लाश जो है उससे महक उठना शुरू हो जाती है। 24 घंटे बाद उसे धोएं तो बकायदा हाथों से देर तक बू आती है। यानी इतनी अजीब सड़ांद है इसकी। अब ये इस नजरिए पर कायम है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं मादा हूं और मैं इस मादी दुनिया की पैदाइश हूं। गौर करें, यहां से पूरी इमारत टेढ़ी हो रही है कि जब आपने ये समझ लिया कि मैं मादा हूं, नहीं मैं मादा नहीं हूं, मैं इस मादे में रखी गई रूह हूं, मैं इस मादे में रखी गई एक जात हूं, एक जात है जिसने इस मादी वजूद को लिबास बना लिया, मैं इस मादी दुनिया की पैदाइश हूं, ये महदूद नजरिया, क्या फरमाया, ये महदूद नजरिया हर आदमी को किसी एक मुकाम में महदूद कर देता है। हमारी सोचों में, हमारी फिक्र में एक मुकाम है जहां हम महदूद हो गए। हम सब कुछ इस जिस्म को जानते हैं और हर आदमी एक महदूदियत के ताने बाने में खुद को गिरफ्तार कर लेता है। अब इसकी मजीद तशरी पूरी किताब में आगे आएगी कि ये है सारा चक्कर। इस महदूदियत से निकलने वाला ज़हन हासिल करना ही कलंदरियत। और इस तरह महदूद और पाबंद नजरिए की बुनियाद पड़ जाती है। इसलिए इस महदूद और पाबंद नजरिए का तारुफ करा दिया कि देखें जब आप जात का मुतालिया करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस नजरिए को दुरुस्त करें। दूसरा कि जमीन पर बसने वाला हर आदमी जब अपना तज़करा करता है तो कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पारसी हूं, मैं ईसाई हूं, हालांकि रूह का कोई नाम नहीं रखा जा सकता। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, इसमें एक लफ्ज है, हर आदमी जब अपना तज़करा करता है यानी अपनी जात को रेफर कर रहा है तो क्या कहता है, वो अपने अकायद का तज़करा कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं, यानी अकायद का एक सेट है जिसका नाम मुसलमान होना है। यहां पे एक बात सुन रखें, कुरान हमें मुस्लिम बनाना चाहता है, हम मुसलमान बने हुए, कुरान हमें मुस्लिम कहता है, हमने खुद को मुसलमान कहा तो पहला जुमला पहला लफ्ज ही हम गलत बोल रहे हैं। अंग्रेजी में मुस्लिम ही कहते हैं, अंदाजा करें, ये उर्दू में आके पता नहीं हमें क्या हो जाता है। मुस्लिम कहते हैं जो बात को तस्लीम करे, जो अपनी कमी को, अपनी खामी को, अपनी कोताही को, अपनी कमजोरी को तस्लीम करे और उसको दूर करने की कोशिश करे, वो है मुस्लिम। और मुसलमान बस वो मानता है कि मैं हूं, क्या हूं इस पे गौर ही नहीं करता। इसी तरह मैं हिंदू हूं, यानी मैं अपने नजरियात का तज़करा कर रहा हूं, मैं पारसी हूं, मैं ईसाई हूं, आगे जुमला देखें, हालांकि रूह का कोई नाम नहीं रखा जा सकता। अब ये जुमला बड़ा मानी खेज है कि रूह का कैसे नाम रखेंगे, करंट का नाम, अब बिजली के सारे पुर्जे चल रहे हैं, आलात चल रहे हैं, कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, कहीं आपका चार्जर चल रहा है, कहीं ओवन चल रहा है, कहीं फ्रिज चल रहा है, कहीं वाटर कूलर चल रहा है, कहीं पानी की मोटर चल रही है, वगैरह वगैरह। इसी तरह बाहर देखें कारखाने इसी बिजली से चल रहे हैं। आप ने करंट का नाम अगर बल्ब रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि सारे करंट को आप बल्ब कहेंगे, अब बिजली कहते हैं उसे। अब अगला जुमला देखें क्या फरमाया कि रोशनी हर जगह रोशनी है, चाहे वो अरब में हो, अजम में हो, या यूरोप में हो, या एशिया के किसी हिस्से में। अब ये कौन किस रोशनी की तरफ इशारा है? ये अफकार की वो रोशनी है जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। रोशनी का लफ्ज रूहानियत में याद रखें, ये चार लफ्जों को अगर आपने दुरुस्त पर्सपेक्टिव में समझना सीख लिया तो ये कलंदर शऊर आपके अंदर उतर जाएगी और आप इससे आरास्ता हो जाएंगे। क्या तजल्ली का मतलब है? तला। नूर का मतलब है ख्याल। रोशनी का मतलब है तसव्वुरात, और रंगों का मतलब है, रंग का मतलब है एहसास। ये चार लफ्ज नोट कर लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया, ये आगे आएंगे, बार बार आएंगे। तो रोशनी से मुराद हमारे तसव्वुरात, और वो तसव्वुरात हर जगह तसव्वुरात ही है, चाहे अरब में हो, अजम में हो, या यूरोप में, या एशिया के किसी हिस्से में। हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अल्लाह का निजाम कुछ इस तरह कायम है कि इस दुनिया में अल्लाह का जो पैगाम भी आया वो अपने अल्फाज के साथ कायम है। अल्लाह का पैगाम अपने अल्फाज के साथ कायम है, जिसने जैसा समझ के उसको अल्फाज की शक्ल दी वो उन्हीं अल्फाज के साथ कायम है। ईसाइयों के लिए बाइबल के अल्फाज मजहब का दर्जा रखते हैं, और मुसलमानों के लिए कुरान मजहब का पेश रॉ है, यानी सामने फेस पेश रॉ, यानी सामने चलने वाला। हिंदू भगवत गीता के अल्फाज की इबादत करते हैं। अब ये सब किताबें दरअसल खुदा के बरगजीदा बंदों की वो आवाजें हैं जो रोशनी बनकर तमाम आलम में फैल गईं। यानी ये सब किताबें दरअसल क्या हैं? अल्लाह के बरगजीदा बंदों, देखे कितनी गहराई है हजूर मुर्शिद करीम के अल्फाज में, बात को कितना जामे तौर पे वो बता रहे हैं कि ये सब किताबें, यानी हमें किसी किताब से नफरत नहीं करनी, किसी को बुरा या कमतर नहीं देखना, ये उनकी असल स्टेटस बता रहे हैं। एक दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये खुदा के बरगजीदा बंदों की वो आवाजें हैं जो रोशनी बनकर तमाम आलम में फैल गईं, यानी अल्लाह के बरगजीदा बंदों के तसव्वुरात आम हो गए पूरे, मतलब लोगों के ग्रोह जो हैं वो इन आवाजों की वजह से एक जगह मुतहद हो गए। ये खुदा के बरगुजीदा बंदे, यानी जो अल्लाह के करीब हैं, जो अल्लाह को समझते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, जो अल्लाह के मिजाज आशना हैं, उसको कहते हैं खुदा के। हमने इसे बुजुर्गी और बस उनकी पूजा करने में लग गए उल्टा, वो उनकी बात को फॉलो करके हमने उन जैसा बनने की चक्कर में नहीं पड़े। ये सबसे भयानक गलती है। अब तीसरी बात, जब हम कायनात की तखलीक पर गौर करते हैं, गौर कीजिए, बात शुरू हुई है कभी कायनात की कर रहे हैं, कभी आपकी बात कर रहे हैं, कभी कायनात की बात हो रही है, कभी आपकी जात की बात हो रही है, कहीं कायनात की बात हो रही है, फिर वापस आपकी जात पे आ गए। बात इस किताब का आगाज शुरू हुआ था कि किताबुल मुबीन, अल्लाह ने चाहा, एक प्रोग्राम तरतीब और तदवीन के साथ वजूद में आया। तरतीब का मतलब मैंने बताया था कि ये सेटअप अरेंज कर दिया कि भाई पहले क्या होगा, बीज होगा, फिर उसमें से स्प्राउट करेगा, पौधा निकले, ये तरतीब हो गई। तदवीन का भी यही मतलब है कि तदवीन मुदव्विन करना, यानी ये पूरा प्रोग्राम एक जामे हालत में बना दिया गया। तो ये क्या बनाया बताया कि किताबुल मुबीन और फिर उसमें 30 करोड़ लोहे महफूज और एक लोहे महफूज में 80,000 हजीरे, हजीरे यानी गैलेक्सी गैलेक्टिकल सिस्टम, फिर उसमें एक एक खरब निज़ाम जो उनको फिर फीड करने के लिए आगे 12 खरब निज़ाम और फिर एक निज़ाम, एक सूरज और उसके गिर्द सैारे, इतनी बड़े पर्सपेक्टिव में इतनी बड़ी तस्वीर दिखाते हुए कहाँ बात आ जाती है? आपको अपनी ज़ात का मुतालिया करना, गौर करें इसमें बहुत बड़ा राज है। इसे लिंक अप करें कि कायनाती तस्वीर अल्लाह के जहन को समझते हुए आपको खुद अपनी ज़ात का मुतालिया करना है, इस पसे मंजर में करना है। हजूर फरमाते हैं जब हम कायनात की तख्लीक पर गौर करते हैं, यानी क्यों ये क्यों बनी, ये क्या है, तो हमें पता चलता है कि हमारी कायनात अल्लाह की आवाज है। अब गौर करें ये लफ्ज कायनात अल्लाह की आवाज है। आवाज क्या है? लहर है। आवाज क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आवाज क्या है? उसमें कुछ मफाहीम है। आवाज में जब हम आवाज सुनते हैं तो हमें कुछ मफाहीम का कुछ मतलब समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों पुकारी गई है। बच्चा रो रहा है, बच्चे की आवाज़ सुन के हम फौरन समझ जाते हैं कि ये भूख से रो रहा है, तकलीफ से रो रहा है, चोट लगी है या किसी मुसीबत में, या आदतन जिद करके रो रहा है, फौरन समझ आ जाता है ना। आवाज़ में बहुत सारी इत्तलात होती हैं। तो कायनात अल्लाह की आवाज़ है। कुरान ने कहा कुन, कुन कहा, कुन जो है उधर हिंदू कहते हैं आकाशवाणी, यानी अल्लाह की आवाज, आसमानी आवाज, आकाश आसमान को कहते हैं, वाणी आवाज को कहते हैं। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब अपनी आवाज में, अब यहां पे गौर करें, अपनी आवाज में यानी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे शऊर में नहीं आ रहा। जब अपनी आवाज में कुन कहा तो सारी कायनात वजूद में आ गई। खुदा जब अपना तारुफ कराता है तो कहता है कि मैं मखलूक का दोस्त हूं। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को नहीं भूलता, इसी तरह खुदा भी अपनी मखलूक को कभी फरामोश नहीं करता। वो खुदा जो हमारा रब है, जो हमारे लिए हर तरह के वसाइल पैदा करता है और हमें जिंदगी के नए नए मराहिल और नित नए तजुर्बात से गुजारता रहता है, बिला शको शुबा हमारा दोस्त है। अब इसमें कितनी बारीकियां हैं, कितनी चीजें हैं, जब आप इस पे एक एक लफ्ज पे गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुर्शिद करीम ने हमें क्या कुछ बता दिया या हमें किन किन बातों से मुतारिफ कराना चाहा। सबसे पहली बात ये कही कि मैं मखलूक का दोस्त हूँ। अल्लाह के ने हम मखलूक को अपनी गरज के लिए पैदा किया, लेकिन दोस्ती के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। फिर बाप बेटे को नहीं भूलता, इसी तरह खुदा भी अपनी मखलूक को कभी फरामोश नहीं करता। और वो खुदा जो हमारा रब भी है, रब का मतलब वसाइल फराहम करने वाला। और फिर आगे अगला एक लफ्ज रब का एक नया मतलब सुन ले, तरबियत देने वाले का नाम भी रब है। तरबियत भी असल में वसाइल है। तरबियत का मादा लफ्ज जो है रब है। हजूर कलंदर बाबा औलिया के बारे में आपने ये जुमला सुना होगा कि वो 11 सलासल के खानवादा हैं और 21 सलासल के मुरब्बी और मुशफ़ी हैं। मैंने जब हजूर मुर्शिद करीम से ये लफ्ज़ की शरह चाही कि जी ये क्या 21 सलासल के मुरब्बी और मुशफ़ी से क्या मुराद है, तो हजूर ने बताया कि उन सलासल में जिन लोगों की तरबियत हो रही होती है उसमें असिस्टेंस के लिए उन सलासल के बड़े हजूर कुलंदर बाब औलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे बच्चों को भी लुक आफ्टर कर दें, यानी वो ऐसी शानदार तरबियत करते। तो तरबियत कैसे की जाती है कि जिंदगी के नए नए मराहिल से गुजारा जाता है और नए नए तजुर्बात करवाए जाते हैं। अगर हमें ये ना करवाए जाए तो हम सीख ही नहीं कुछ सकते। अल्लाह जिन भी हालात से गुजार रहा है हमें खुशी खुशी खंदा पेशानी से उनको फेस करना है और उसमें से गुजर के दिखाना है, कामयाब होना है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम इन तजुर्बात से गुजरे। मुकद्दस आगे फरमाते हैं कि मुकद्दस किताबों का मुतालिया करने के बाद जिन कशाफात होते हैं वो ये हैं। अब जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं उनका रिजल्ट बता रहे हैं क्या, कि खुदा अपनी मखलूक का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे हमारे जिस्मानी खदो खाल कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना। अब नस्ली सिलसिले की तरफ जब तफक्कुर किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि तखलीक एक प्रोग्राम के मुताबिक अमल में आ रही है। जब हम जमीन माँ के पेट में कोई बीज डालते हैं तो वो बीज नशो नुमा पाकर एक दरख्त बन जाता है। अब इस पे बकायदा अगर हम गौर करें कि ये क्या निजाम बयान किया जा रहा है, कि ये तखलीक का प्रोग्राम, तखलीकी प्रोग्राम कैसे अमल में आ रहा है, वो पूरा मंजर दिखाया जा रहा है कि ये एक बात तय कर ली गई थी कि इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ेगा। ये अल्लाह ने तय किया कि जब जमीन के अंदर बीज डाल दिया जाता है तो वो जमीन से पानी को जज्ब करता है। अभी अगला मरहला शुरू हो गया और वो पानी बीज में मौजूद एक सुराख, बहुत बारीक सा सुराख होता है, बीज कितना भी छोटा हो उसके अंदर एक सुराख होता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके जरिए बीज के अंदर पहुंचता है और पहुंचकर सोए हुए बीज को, यानी डॉर्मेंट सीड को, यानी बीज के अंदर एक बीज है, बीज जो हमें बाहर से दिख रहा है उसके अंदर एक बीज है, उसको डॉर्मेंट सीड का है, उसकी नशोनुमा करता है। वो जो डॉर्मेंट सीड है वो दरअसल एक माइक्रोफिल्म है जिसके अंदर पूरा पौधा छुपा हुआ है। जब पानी उसे पहुंचता है, मिलता है, तो उसकी नशोनुमा शुरू हो जाती है। किसकी? वो जो छोटी सी माइक्रोफिल्म उसके अंदर पड़ी है। अब बीज की दालें कॉटिलीडेंस, जैसे अब चने का दाना आप लें, उसके उसे तोड़ें तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उसे दाल कहते हैं, तो उनको अंग्रेजी में कॉटिलीडन कहते हैं। तो इस ये असल में क्या चीजें, इन कॉटिलीडन ये स्टोर हाउस है उसके लिए, बीज के लिए, बीज के जो अंदर डॉर्मेंट बीज पड़ा हुआ है ये उसके लिए गिजाई जखीरा है। अंडे में ये सफेदी और जर्दी असल में उसका न्यूट्रिशन का, उसकी खुराक का, वो जो बीज के अंदर बीज है, अंडे के अंदर जो असल बीज है जिसने चूजा बनना है उसके लिए ये गिजाई इंतजाम किया गया है। क्या होता है, बीज की दालों के अंदर छुपा हुआ एक नन्हे नन्हे पत्ते और छोटी डंडी में, ये वो जो माइक्रोफिल्म है, उसमें खलियाती तकसीम वकूफ पजीर होती है। खलियाती तकसीम अंग्रेजी में सेल डिवीजन कहते हैं, यानी सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। किसके? वो जो माइक्रोफिल्म के अंदर एक सेल पड़ा होता है उसको जायगॉट कहते हैं, और वो अपना आपको तकसीम दर तकसीम यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, वो तकसीम हो रहा है लेकिन कर मल्टीप्लाई रहा है, ये देखें ये लफ्जों का। तो छोटी डंडी में खलियाती तकसीम वकूफ पजीर होती है, फिर उस फिल्म में मौजूद नन्हे नन्हे पत्ते बढ़कर तने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये डंडी बढ़कर जड़ बन जाती है, यानी ऊपर बढ़ती है तो तना बनता है, नीचे जाती है तो जड़ बन जाती है। अब ये जड़ जमीन में दाखिल होकर न सिर्फ जमीन से उस नए पौधे के लिए पानी और गजा जज़ब करती है, बल्कि उस पौधे के लिए जमीन में मुस्तकिल ठहराव का जरिया भी बनती है। जड़ के देखें दो काम बता दिए, पानी और गजा जज़ब करना और जमीन में ठहराव का सबब बनना। इसके बरक्स तना जमीन के मुखालिफ सिम तो रोशनी की जानब बढ़ने लगता है। पौधे की इब्तदाई उम्र में पौधे की दालें जो उस नौमौलूद पौधे के लिए गजा को जखीरा किए होती हैं, पौधे को गजा फराहम करती हैं। जब पौधा इस काबिल हो जाता है कि वो सूरज की रोशनी में ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद अपनी गजा तैयार करने लगता, तो ये दालें खुश्क होकर ख़त्म हो जाती हैं यानी कंज्यूम हो जाती हैं। और पौधा नशो नुमा के बाद ज़मीन पर एक तनावर दरख्त बन जाता है। इसी तरह देखें, आप मिसाल दे रहे हैं, तख्लीकी प्रोसेस समझा रहे हैं। इसी तरह एक बाप या एक शौहर अपनी जौजा यानी अपनी खेती में बीज डालता है, तो ज़मीन की तरह वहाँ भी नशो नुमा का सिलसिला एक बीज ही की तरह कायम है। सबसे पहले इब्तदाई दर्जे में एक नर्म व नाजक तना वजूद में आता है जो नेटोकॉर्ड कहलाता है। नशोनुमा का ये सिलसिला इर्तकाई मनाजल तय करके जब तकमील को पहुंचता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जमीन अपने पेट से किसी दरख्त को बाहर निकालती है, माँ के पेट से बच्चा तवल्लद होता है यानी पैदा होता है, मादी दुनिया में जाहिर होना शुरू हो जाता है। जी यहां तक आपने सुन लिया मेरे साथ पढ़ा, इसमें कोई सवाल जो पूछना हो आप पूछ लें। मैं मेरा ख्याल है यहीं रुक जाते क्योंकि आपका टाइम तकरीबन हो ही चला है। जी जनाब, हेलो।
जी डॉक्टर साहब,
मैंने कहा कि जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये बताइए कि कोई सवाल है जो हमने पढ़ा, ये बात पल्ले पड़ी कुछ? मैंने कहा था ज़ात का मुतालिया का उनवान है और इसमें लफ्ज़ ज़ात नहीं आया, क्या आया? अपना आप। ज़ात को क्या कहा? अपना आप। ये नुक्ता खास तौर पे आपने नोट करना है, इस बात को समझ लें कि हम कलंदर शऊर से आरास्ता होने के लिए एक तरफ बड़ी चीजों का पूरी कायनाती प्रोग्राम को भी देखेंगे, दूसरी तरफ बीज के अंदर वो बारीक छोटा सा नुक्ता माइक्रोफिल्म जो इस दर्जे छोटी है कि खुर्दबीन से दिखती है वो भी देखेंगे। कलंदर शऊर हमें एक तरफ बड़ी चीजों को बड़ा और छोटी चीजों को देख, बड़ी चीजों को भी देखना और बड़ी छोटी चीजों को भी देखना सिखा रहा है। ये ज़ाविया निगाह की तरफ मैं आपकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि एक तरफ आपको अपने जहन को इतना बड़ा करना है और दूसरी तरफ उसको इतना माइक्रोस्कोपिक करना है। जी भाई जी, ये कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो जी। वालेकुम अस्सलाम जी बिरादर।
जो इंफ्राजी तौर पर जो हमें ये रोजमर्रा के मामलात में हमें जो ये लिमिटेड चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बंदा अपने रोजगार के सिलसिले में, बीवी बच्चों के सिलसिले में अपने आप को कैद सा महसूस करता है,
जी जी,
इससे आजादी भी बंदे को पॉसिबल है?
हाँ जी बिल्कुल है। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, देखें जब आप इन तीनों दर्जों को समझ लेंगे ना, کہ مجھے مادی زون میں بھی پورا کام کرنا ہے، ذہنی سطح پہ بھی پورا کام کرنا ہے، اور روحانی سطح پہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ تینوں درجے چلا کون رہا ہے؟ آپ کی ذات. اب ذات کو چونکہ ان چیزوں کی تفہیم نہیں ہے، لہذا اس کو دشواریاں ہو رہی ہیں. کلندر شعور ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم پہلے تو دیکھیں نا، میں آپ کو اگر ڈرائیونگ سکھاؤں گا تو پہلے آپ کو گاڑی کا تعارف کراؤں گا نا، کہ بھئی یہ گاڑی ہے، اس میں یہ گیئر ہے، اس میں یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یہ سٹیرنگ ہے، یہ ہینڈل ہے، یہ لیور ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتاؤں گا نا. اس کے بعد آپ خود مشق کریں گے، اس کے بعد آپ چلانا سیکھیں گے. سٹیرنگ پہ کنٹرول الگ ہوگا، بریک کس وقت لگانی ہے، کتنے ریفلیکسز چاہیے اس کے لیے، کتنا زور لگانا ہے، سب کچھ آپ کو خود تجربے کرنے سے آئے گا نا.
یہ سر جس طرح آپ نے آج یہ ٹاپک پڑھایا ہے،
جی
ہم نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کے نوٹس بھی رائٹ ڈاؤن کیے ہیں جو پوائنٹس آپ نے بتایا.
جی جی.
اب ان کو ڈیورنگ میڈیٹیشن جب میں نے بیٹھنا ہے یا تہائی میں کہیں بیٹھوں گا
انشاءاللہ،
تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ غور کروں گا اللہ کی توفیق کے مطابق. تو یہی پروسیس اپنائیں گے نا اس کو.
بالکل. دیکھیں ہمیں اپنے مرشد کریم کے الفاظ پہ تفکر کرنا ہے. انہوں نے یہ سارے کا سارا کھانچا کہاں جوڑا ہے؟ الہامی کتابوں سے. اس کی آپ کو اصل بتا دیے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے ایک آواز یعنی تصورات کو عام کی ہے. ہمیں وہ تصورات تو سمجھنا ہے. اگر ہم اس میں فلو میں آ گئے، اگر ہم اس فلو میں آ گئے تو ہم اللہ کے مطابق ہو جائیں گے یا نہیں؟
کہ
جب ہم اللہ کے مطابق ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے کام خود کرے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جتنی زیادہ فہم ہوگی اسی طرح سے آپ ہینڈل کریں گے نا اشیاء کو، معاملات کو.
جی 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 سر بالکل.
بیسیکلی یہ کتاب کسی کو براہ راست پیسے نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ پیسے کی حقیقت کو سمجھ کے اس سے اوپر اٹھیں گے تو پیسہ خود بخود بنے گا. اب خود بخود نہیں بنے گا، یعنی آپ کا ذہن اس قابل ہو جائے گا کہ وہ درست فیصلے کر سکے، لہذا پھر آپ کا جسم اکارڈنگلی درست سمتوں میں چلے گا. آپ پریشان ہوئے بغیر کیسے ہینڈل کریں گے، یہ آپ کو کلندر شور سکھا دے گا. ایک طرف آپ کو پوری طرح اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے، دوسری طرف آپ کو اپنے جسم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے ذہن سے پورا کام لینا بھی تو آنا چاہیے نا.
صحیح
بھائی جان.
ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک.
چلیں بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال؟ میرا خیال ہے ٹائم آپ کا پورا ہو چلا ہے. چلیں اللہ حافظ. اس میں تو 30 سیکنڈ میں اللہ ہی حافظ کہا جا سکتا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ.
اللہ حافظ.